बता रहे थे सेठ जी कि हमारे द्वारा कितनी चोरियां होती हैं, पांच प्रकार की। समय की चोरी, धन संपत्ति की चोरी, शरीर की चोरी, मन की चोरी और बुद्धि की चोरी। तो विशेष बात तो कल बताई, धन संपत्ति की चोरी हम कैसे करते हैं। बोलते तो हैं भगवान की है, और इस धन संपत्ति को लगाते हम अपने ऐश आराम में। खास सार बात बताई, ये चोरी है। अब समय की चोरी बताते हैं। समय की चोरी कैसे करते हैं वो बताते हैं। 24 घंटे के समय में 6 घंटे तो आप सो जाओ, और 18 घंटे जो आप काम करो वो भगवान का समझ के करो। ये जो चौकसी है, चौकीदारी है, ये 18 घंटे तक करने की है। गीता जी में कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। खाना पीना यथा योग्य, सोना यथा योग्य, कर्म करना यथा योग्य, 24 घंटे का 4 विभाग करो, 6 घंटे सो, 6 घंटे आहार विहार आदि में लगा सकते हो, 6 घंटे शरीर के निर्वाह के लिए आजीविका का काम कर सकते हो, और 6 घंटे भजन साधन करो। ये 24 घंटे का सामान्य उपयोग बताया है। अब आप इसमें से इधर उधर से समय खूब आसानी से निकाल सकते हो। जैसे लोभी आदमी होता है, वह इधर उधर खर्च होने वाले पैसों को रोक करके पैसा बचाता है, इसी प्रकार से समय को बचाना चाहिए। ये जो आहार विहार आदि में 6 घंटे लगाते हैं, उसमें 3 घंटे पर्याप्त हैं। बाकी 3 घंटे को भजन साधन के घंटे में बढ़ाओ। जीविका का निर्वाह यदि 6 घंटे में नहीं होता हो तो ये 3 घंटे जीविका निर्वाह में लगा सकते हो, इसमें हर्ज की बात नहीं है। परंतु जीविका निर्वाह को भी तो भगवान की प्राप्ति का साधन बना दोगे तो ये जीविका निर्वाह भी हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। कि जीविका उपार्जन करते हैं उस समय भगवान का क्या काम करें, ये एक तो काम ही भगवान को भगवान का समझ लो, और भगवान का नाम जप उस समय कर सकते हो। ये खास चीज है, इसका ध्यान करें। 24 घंटे में हर समय हमको भगवान का जप ध्यान करना चाहिए। 6 घंटे सोते हैं उसमें तो हम कर नहीं सकते। बाकी जो 18 घंटा है उसमें जो अभ्यास है वो सुषुप्ति में भी चल सकता है। थोड़ा कम करें, राम राम की आवाज कम करें। ध्यान सब समय किया जा सकता है। एक मामूली बात है, एक बार आपने बुद्धि के द्वारा परमात्मा को तत्व से समझ लिया और ये विश्वास कर लिया कि परमात्मा सब जगह है, जैसे बिजली के तार में सब जगह बिजली है, दिया सलाई में सब जगह आग है, बर्फ में सब जगह जल है, इसी प्रकार परमात्मा सब जगह है। यह बात यदि समझ में आ जाए और निश्चय हो जाए, फिर यह बात मन से दूर हो कैसे सकती है। स्वप्न में भी नहीं भूल सकते, सोते समय भी नहीं भूल सकते, सदा इसकी स्मृति रहेगी। देखो सदा स्मृति का अर्थ ये नहीं है कि हरदम ये रहेगा परमात्मा व्यापक परमात्मा व्यापक, ऐसे नहीं है। माने बर्फ के अंदर जैसे जल है, एक बार समझ लिया इसमें कोई संदेह नहीं है। कपड़े में धागा है इसमें कोई संदेह नहीं है, हरदम याद नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से बुद्धि से विवेक से जब परमात्मा के स्वरूप को समझ लिया तो समझ में आने के बाद वो समझ फिर कहीं जाती नहीं है, वो जा नहीं सकती है। इसी को ही परमात्मा का ध्यान बोलते हैं। देखो सेठ जी ऐसी बात कम बोलते हैं। बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझ लिया और उसमें कोई संदेह नहीं रहा, यही ध्यान है। वास्तव में परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप में आनंद ही आनंद है। और उसका एक बार चस्का लग गया फिर ये मन और बुद्धि परमात्मा के बाहर जा ही कैसे सकते हैं। मन को और करना क्या है, मन तो सुख की तरफ दौड़ता है ना। तो आपको परमात्मा का आनंद मिल गया, अब मन इधर उधर क्यों भटकेगा। यदि आनंद का अनुभव नहीं हुआ है तो फिर आपके मन में परमात्मा का ध्यान भी नहीं हुआ, और परमात्मा का ध्यान नहीं हुआ तो परमात्मा के विषय में आपको ज्ञान भी नहीं हुआ, विवेक भी नहीं हुआ। ये एक एक से जुड़ी हुई बात है। जैसे लकड़ी में, गीली लकड़ी में सीधा धुआं नहीं निकलता, उसको जगाते हैं तो धुआं होता है। इसका मतलब यहां अग्नि जरूर है, अग्नि के बिना धुआं कैसे हुआ। ऐसे तो लकड़ी पड़ी थी, धुआं तो हुआ नहीं, ये धुआं हुआ है तो इसका मतलब इसमें लकड़ी में आग आई है। इसी प्रकार से मन से बुद्धि से विवेक से परमात्मा को समझ लिया जाता है तो फिर ये मन बुद्धि ध्यान में डूब जाते हैं और उससे आनंद रस की अभिव्यक्ति होती है। ये आनंद अपरिमित है, असीम है, सत्य है, आनंद ही आनंद है। जब ये बात आपके अंदर पूरी जग जाए तो छोड़ कैसे सकते हैं। कारण कि संसार में पशु पक्षी मनुष्य देवता यक्ष राक्षस कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आनंद न चाहता हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो। यदि विवेक और बुद्धि के द्वारा आनंद समझ में आ जाए और उसका अनुभव हो जाए तो आनंद को छोड़ने की बात कैसे पैदा होगी। इस आनंद में स्वतः मन लगेगा, अपने आप ही लगेगा। मन को जब आनंद की अनुभूति होगी तो वो बार बार उस आनंद में ही डूबेगा। जबरदस्ती आप उसको संसार में लगाना चाहोगे तब भी संसार में नहीं लगेगा। सेठ जी कहा करते थे कि कभी कभी मेरी ऐसी वृत्ति होती है, सेठ जी ने कही कि मैं जान करके व्यवहार में बुद्धि को लगाना चाहता हूं, लगती नहीं है, वापिस उधर ही खींचती है। मन की वृत्ति एकदम परमात्मा में ही खींचती है, मैं जान करके लगाना चाहता हूं संसार में, लगती नहीं। दूसरी बात है नाम जप की। जो लोग भगवान के तत्व को समझ नहीं पाते हैं, जिनके द्वारा निरंतर ध्यान नहीं होता है, उनके लिए नाम जप बहुत बड़ा सहारा है। पढ़े लिखे लोग हैं नहीं और ज्यादा जानते भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नाम जप बहुत बड़ा साधन है। परमात्मा के नाम का जप परमात्मा के स्वरूप को याद दिलाता है। ये नाम जप की विशेष महिमा है। ज्यों ज्यों नाम जप करना लगता है त्यों त्यों नामी को वास्तविक रूप से बसता चला जाता है और उसे बहुत प्यारा लगने लगता है। जैसे व्यवहार में भी आपका कोई प्रेमी व्यक्ति है और कोई दूसरा आदमी उसके विषय में चर्चा करता हो, नाम लेता हो, आप वहां खड़े हो तो आपको वो चर्चा कितनी अच्छी लगती है। कई बहुत सी माताएं बहनें हो और वहां किसी के पति के बारे में कुछ कहा जाए तो जो धर्म पत्नी होती है वो बड़े चाव से वो बात सुनती है कि मेरे पति के प्रति क्या बोलते हैं, क्या भाव है, कैसा मन उधर जाता है। इसी प्रकार से अपने भगवान है, प्यारे भगवान है, उन भगवान का कोई दूसरा भी नाम लेता है तो कैसे हमारा मन खिंचता है। खुद नाम लेवे तो फिर कहना ही क्या है। भगवान का नाम तो हजार गुना अधिक प्यारा होता है, संसार के प्रेमियों से हजार गुना ज्यादा भगवान का नाम प्यारा होता है, क्योंकि भगवान हमारे लिए सब प्रेमियों में हजार गुने प्रियतम है। भगवान के लिए भक्त प्रियतम, भक्त के लिए भगवान प्रियतम, और अपना प्रियतम सबको प्यारा लगता है। किसको छोड़े, कोई नहीं छोड़ना चाहता। किसी से बातचीत के क्रम में यदि व्यक्ति के द्वारा नाम जप नहीं होता है तो वह अपने उस प्रियतम का स्वरूप तो भूल नहीं सकता। किसी से भी बात करो तो ऐसे मत देखो कि मैं अमुक आदमी को देख रहा हूं, उस अमुक आदमी के अंदर भगवान को देख करके बात करो, क्योंकि आपके प्यारे भगवान उसमें मौजूद हैं। ऐसे आप बर्ताव करो, ऐसे आप भगवान का नाम जप लो, ध्यान करो। अपना संपूर्ण समय जब हम भगवान में नहीं लगाते हैं, दूसरे काम में लगाते हैं, तो ये समय की बर्बादी है। समय मिला किस काम के लिए और लगाते किस काम के लिए, तो भगवान को भूलकर और जगह समय लगाते ही समय की चोरी हुई। जैसे कोई मुनीम है, गुमास्ता है, अपनी ड्यूटी का समय मालिक के लिए पूरा नहीं लगाता है और वो समय चुरा करके अपने किसी निजी काम में लगाता है तो मालिक को ये बुरा लगता है। ऐसे ही आपके लिए 8 घंटे की ड्यूटी है, यदि 8 घंटे की ड्यूटी है तो मालिक के काम में 8 घंटा तो लगाओ। इसके अतिरिक्त आप कुछ समय लगा सकते हो तो मालिक खुश हो जाएगा। इसी तरह अपना जो मालिक परमात्मा है उसके लिए 24 घंटा ही अर्पण कर दो, सारा समय भगवान के लिए कर दो। फिर हमने अपने निमित्त कुछ रखा ही नहीं। कहते हैं आपका 24 घंटे से क्या मतलब है, सोवे नहीं, खावे नहीं, ये नहीं है। सोना भी भगवान के लिए, खाना भी भगवान के लिए, आजीविका का काम भी भगवान के लिए और भगवान का काम भी भगवान के लिए। जिन 4 चीजों में आपको बांटा था वो सब भगवान के लिए करो। इससे आपके समय की चोरी नहीं होगी, नहीं तो समय की चोरी होगी। अब बात आती है शरीर की चोरी। शरीर का चुराना क्या है? भगवान की आज्ञा ये थोड़ा ही है कि तुम ऐश आराम और भोग में अपना समय लगाओ। भगवान तो कहते हैं तुम अपने शरीर की रक्षा करो, परंतु शरीर से जो आप कर्म करो वो मेरे लिए लगाओ, मेरे लिए काम करो, खट करके काम करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खटनी करनी चाहिए उतनी खटनी नहीं करते और इसके बदले कम कसापना करते हैं, जी चुराते हैं, कारीगर वगैरह काम करते हैं, तो शौच आदि पेशाब आदि का बहाना बनाते हैं, समय बर्बाद करते हैं। इस तरह किसी बात का बहाना लेकर समय बिता देना, समय नष्ट कर देना और पैसा पूरा लेना, ये शरीर को आराम देना, ये शरीर की चोरी है। इसलिए शरीर को हरदम काम में लगाते रहना चाहिए। शरीर को यदि काम में नहीं लगाओगे, भोग आराम में लगाओगे, तो शरीर आपका बेकार हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। मन की चोरी क्या है कि ये तो सीधी बात है, भगवान में मन न लगाकर संसार में मन को लगाना, ये मन की चोरी है। जिसका मन विशेष रूप से संसार में लगा है वो कृतकृत्य थोड़ा ही हो गया। जब तक तुम्हारा मन भगवान को छोड़कर किसी और जगह जाता है तब तक तुम्हारे साधन में कमी है, साधक बने ही नहीं। साधक नहीं बने तो सिद्ध की इस अवस्था तो दूर है। सिद्ध होने के लिए अपने मन की, बुद्धि की, शरीर की, किसी की भी चोरी मत करो। चोरी करना यही कि सबको भगवान में लगाकर दूसरे काम में मत लगाओ। इसमें भगवान विराजमान, सब में भगवान विराजमान है, सबको भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करो। ये भगवान तक सेवा पहुंचती है। आपके भाव में यदि सेवा का भाव है, भगवान का भाव है, तो वो भाव भगवान तक पहुंचता है। किसी से बात कर रहे हो तो भगवान से बात कर रहे हैं। किसी के यहाँ घर पर जा रहे हो कि साहब हम अमुक आदमी के घर जा रहे हैं, बोल दो, पर मन में समझो कि हम भगवान के घर जा रहे हैं। कोई भी काम करते हो तो ये भगवान का काम कर रहे हैं। शरीर, मन, इंद्रिया इत्यादि को भगवान में लगाओ। प्रातःकाल जल्दी उठते ही नेत्र बंद करके जो अपना इष्ट देव है उसका ध्यान करो और मुंह से भगवान का नाम ले। भगवान का ध्यान करो तो भगवान से उस समय यही प्रार्थना करो, हे प्रभु आज का दिन आप ही के काम में अर्पित है। कानों से भगवान का नाम सुनो। घंटाकर्ण नाम के भगत थे, उनके पास में कोई लौकिक चर्चा करते तो घंटा हिला देते कानों में, या घंटा लगा हुआ टन टन टन, और भगवान का नाम सुनाते, भगवान का चरित्र सुनाते तो बैठ करके बड़े प्रेम से गदगद भाव से सुनते थे, नहीं तो अपना सिर हिला दे। वाणी भगवान के यशोगान में लगाओ। दूसरों को सुख पहुंचाने की कोई बात हम करते हैं तो भगवान की सेवा में ही लगाना हो गया। दूसरों की सेवा में लगो तो इसका अर्थ है भगवान के काम में लग गया। मन से भगवान का चिंतन करो। यदि बुद्धि में ये निश्चय हो जाए कि भगवान सर्वव्यापक सब जगह है तो आपकी भावना, आपकी समझ दृढ़ हो गई तो भगवान की सेवा हो गई। जैसे गोपियां भगवान की सेवा करती थी, परंतु सेवा का अर्थ क्या था कि वे जो भी काम करती वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती थी, तो उनको भगवान के दर्शन होते ही रहते थे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए गाय दूती थी, भगवान कृष्ण के लिए माखन निकालती थी, भगवान कृष्ण के लिए ही छाछ बनाती थी, मट्ठा बनाती थी। कृष्ण हमारे घर आएगा उसको मैं मट्ठा पिलाऊंगी। सारा काम भगवान के लिए करती थी, तो आज गोपियों का कितना ऊंचा स्थान है। कोई भी व्यक्ति संध्या करता है, गायत्री जप करता है, पर वास्तव में संध्या में उसका मन नहीं लगता है, जप करते समय जप में, गायत्री मंत्र में, स्वरूप में ध्यान नहीं है, बल्कि मन ऊट पटांग चिंतन करता है, इधर उधर भटकता है, तो लिखा ये सब धोखा नहीं तो और क्या है। कहते हैं फिर क्या करें कि देखो, एक तो वो साधक होता है, साधन करने की जिसकी इच्छा है और फिर मन ऊट पटांग बातें करता है, उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए नहीं है। तो ये संध्या वंदन के देखा देखी कर ले, संध्या वंदन देखा देखी। जगत के सामने केवल दिखावटी काम करता है, महात्मा बनकर रहता है, धर्मात्मा बनकर रहता है, पर उसमें ये गुण नहीं आते, ये तो चोरी है, धोखा है, दुनिया को धोखा देता है। देखो हम संध्या करते हैं, हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, अपने को भी धोखा देना है, भगवान को भी धोखा देता है, क्योंकि अंदर में भगवान के प्रति निश्चय नहीं है। भगवान की प्राप्ति का निश्चय हो जाए फिर कोई मन इधर उधर जाता भी हो तो वो बस में हो सकता है। इस प्रकार मन इंद्रिया बुद्धि को भगवान में लगाओ, भगवान के अर्पण कर दिया और मान लिया कि सब कुछ भगवान है, तो फिर जो कुछ इन वस्तुओं में व्यक्तियों में परिवर्तन होता है उसका हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि सब धन भगवान का है, अब व्यापार में घाटा लग गया तो मन में दुख नहीं होना चाहिए। परिवार के सब सदस्य भगवान के हैं, तो अब कोई मर गया तो हमारे मन में दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अपने शरीर में बीमारी हो गई तो दुख नहीं होना चाहिए, ये इसकी कसौटी है। मनुष्य जब तक साधक है उसको सिद्ध बनने का प्रयत्न करना चाहिए, और जब उसको सिद्धि मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो लोक संग्रह के लिए काम करना चाहिए। लोक संग्रह क्या है? लोक का अर्थ है प्राणी और संग्रह का अर्थ है इकट्ठा करना, अर्थात 84 लाख योनियों में भगवान से बिखरे हुए जो प्राणी है उनको भगवान में लगाना, ये लोक संग्रह है। निश्चयात्मक जो बुद्धि है वो परमात्मा के स्वरूप का निश्चय करने वाली है, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। इस प्रकार भक्ति की भावना से एक परमात्मा ही है और कोई नहीं है, ज्ञान के मार्ग से भी एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है, अर्थात सबका अभाव है। ये बात हृदय में जागृत रहनी चाहिए, सबका अभाव है। यदि इस बात में कोई दोष है, यानी इसका निश्चय नहीं है और नाना बुद्धि होती है, अनेक विषयों में बुद्धि फंसती है, तो फिर उसको अनेक प्रकार के शरीर भी जन्म मरने के लिए मिलते रहेंगे। भगवान ने भी कहा है कि लोक संग्रह के लिए मैं भी काम करता हूं, अर्जुन तुमको भी काम करना चाहिए। अज्ञानी पुरुष जैसे कर्मों में आसक्त होकर कर्म करता है, ज्ञानी को भी कर्म तो वैसे ही करना चाहिए पर अनासक्ति से करना चाहिए, आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए। संसार के लोगों के कल्याण की जो इच्छा है, इस इच्छा में कोई दोष नहीं है, बल्कि ये इच्छा तो भगवान के अंदर लगाने के लिए ही होती है। साधक को कर्म करना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ऐसे ज्ञानी महात्मा को कर्म करने चाहिए दूसरों को महात्मा बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि अपना तो काम हो गया अब अपने क्या मतलब, कोई कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं हो। सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये एक मन में विशेष भाव पैदा होना चाहिए, यही समझ के काम करो। ये भी देख के ये भी काम करना, देखो हम जो काम कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं, हम जो अंदर में बुरा भाव रख रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं, ऐसे भगवान को अपने नजदीक समझ करके काम करो तो पाप से छूट जाओगे। पाप करने की भी मन में आती हो तो क्या, अरे देखो हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान इस पाप को देख रहे हैं, भगवान के सामने मैं क्या पाप कर रहा हूं। प्राय मनुष्य की आदत होती है पाप के लिए वो छिपाव रखता है, पर वो भूल जाता है कि सब जगह भगवान रहते हैं, उनसे क्या छिपाव होगा। ये बात ध्यान में रख करके व्यवहार करना चाहिए। भगवान के कार्य में लगे रहना चाहिए, तभी ये शरीर ठीक रहेगा, समय का सदुपयोग होगा, गृहस्थ भी आपको सुखद मालूम देगा, आनंद देने वाला होगा। नहीं तो आज यही गृहस्थ सबको दुख देने वाला बन चुका। साधक को चाहिए कि भगवान के पदार्थों को, जैसे स्त्री है, पुत्र है, रुपया है, संसार के और भोग सामग्री है, इन सब को भगवान में लगाओ। सब भगवान के काम में न लगकर दूसरे काम में लगाना एक प्रकार से इनके साथ अन्याय करना है। सावधान रहो, क्योंकि मानव जीवन हमको जिस बात के लिए मिला है उस बात की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। ये प्रमाद नहीं तो क्या है? बात चल रही थी प्रमाद ही मृत्यु है। जिस बात के लिए हमको मानव शरीर मिला, उधर यदि हम प्रयास ही नहीं करते हैं, विलंब करते हैं, तो ये प्रमाद नहीं तो क्या है? तो मृत्यु है। और ये प्रमाद हमारा बनाया हुआ है, किसी का भी बनाया हुआ नहीं है। इस प्रमाद से तो सबको बचना चाहिए। सिद्ध महात्मा होते हैं उनको भी बचना चाहिए, लोगों पर दया करनी चाहिए, महात्मा को समझना चाहिए कि लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखते हैं तो मैं जो काम करता हूं वो सब लोगों पर असर करने वाला है, इसलिए उसको बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। अपने तन मन धन बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान में लगाओ। भगवान की प्राप्ति करना भगवान के धाम में चले जाने के समान है, इसी शरीर के रहते रहते। और एक बार बस भगवान के धाम में घुस गए, फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर लौटने का काम ही नहीं है। कई कई कारक पुरुष आते हैं भगवान की इच्छा से, अपने को उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि कारक पुरुषों का एक अलग ही भगवान का आदेश होता है। अपने तो अपना काम करना है कि भगवान की प्राप्ति में लगे, भजन साधन करें, सेवा में लगे, और नदी नाव संयोग की तरह थोड़े दिन के संबंध को खूब आनंद के साथ हम लोग व्यतीत करें। ये